दिन भर तारीख 21 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को खत्म करने का दिया आदेश। कांग्रेस के 9 बागी विधायक की सदस्यता रद्द। हरीश रावत 29 अप्रैल को सिद्ध करेंगे बहुमत।
वो तो महाबली हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो तो बड़े चौड़े सीने वाले लोग हैं। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस क्षण में भी सहयोग की बात कर रहे हैं।
क्या हाईकोर्ट का फैसला केंद्र राज्य संबंधों के लिए मिसाल बनेगा?
जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो वो कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेशन के बजाय उन्होंने कन्फ्रंटेशन का रास्ता चुना है। तो जो आज का फैसला आया है, इसके बाद इन सब कोशिशों पे मैं आशा करता हूँ लगाम लग जाएगी।
पाकिस्तान की सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में 6 अधिकारियों को किया बर्खास्त। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र की ओर से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा में 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण होगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट के फैसले को उत्तराखंड की जीत बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हरीश रावत सरकार अल्पमत में है और इसका फैसला 29 अप्रैल को हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना ने अपने 6 बड़े अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया है। बर्खास्त किए गए सभी अफसरों का संबंध फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान से बताया गया है। जबरन रिटायर किए जाने पर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाएं भी वापस ले ली गई हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक जिन 6 अफसरों को नौकरी से निकाला गया है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खटक, मेजर जनरल एजाज शाहिद, ब्रिगेडियर असद शहजादा, ब्रिगेडियर आमिर, ब्रिगेडियर सैफ और कर्नल हैदर शामिल हैं। सीरिया के विद्रोहियों के अधिकार वाले रस्तान शहर में राहत सामग्री की सबसे बड़ी खेप पहुंच गई है। 1,20,000 लोगों के लिए दवाएं और खाने का सामान लेकर 65 ट्रक पहुंचे हैं। राहत सामग्री की आपूर्ति रेड क्रॉस और सीरियन रेड क्रीसेंट की ओर से की जा रही है। साल 2012 के बाद यहाँ पहली बार राहत सामग्री पहुँची है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने कहा है कि संघर्ष में घिरे लोगों तक मदद पहुंचाने के काम में वास्तविक प्रगति हुई है। उन्होंने जिनेवा में कहा,
बॉटम लाइन, देयर हैज बीन मॉडेस्ट बट रियल प्रोग्रेस।
मूल बात यह है कि इस मामले में वास्तविक प्रगति हुई है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि हम संतुष्ट महसूस कर सकें। मदद के काम में लगी टास्क फोर्स इस काम को और मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश में है। अगर मानवीय मदद में इजाफा होता है और संघर्ष पर रोक लगी रहती है तो इससे राजनीतिक बातचीत में मदद मिलेगी। ये थे स्टेफान दे मिस्तूरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना पर अपना नियंत्रण बढ़ाते हुए नया ओहदा हासिल किया है। राष्ट्रपति सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर के कमांडर इन चीफ हो गए हैं। राष्ट्रपति पहले से ही चीन सेना के प्रमुख हैं। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई है। खासकर साउथ चाइना सी के विवादित हिस्से पर अधिकार को लेकर चीन खासा आक्रामक है। नेटो ने कहा है कि एजियन सागर के रास्ते तुर्की से यूरोप जाने वाले प्रवासियों की संख्या में भारी कमी आई है। नेटो का कहना है कि जब से उसके पोत इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तब से प्रवासियों की संख्या में गिरावट हुई है। ये संख्या 2,000 लोग प्रतिदिन से घटकर 150 लोग प्रतिदिन तक हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे राजनीतिक संकट का तात्कालिक समाधान निकालते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को खत्म करने का आदेश दिया है। अदालत ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी है। अदालत ने 29 अप्रैल को सदन में बहुमत करने का आदेश दिया है। बीजेपी खेमा और बागी विधायक इस फैसले से सकते में हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
दोपहर बाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही देहरादून स्थित हरीश रावत के आवास बीजापुर गेस्ट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का तांता लग गया और हरीश रावत जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। अदालत को भी धन्यवाद देने की झड़ी लग गई। अभूतपूर्व फैसले में कोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस वी के बिष्ट की खंडपीठ ने 29 अप्रैल को सदन में बहुमत का परीक्षण कराने का आदेश भी दिया। बर्खास्त सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोर्ट के फैसले को जन भावनाओं की जीत करार दिया।
वो तो महाबली हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो तो बड़े चौड़े सीने वाले लोग हैं और हम सर झुका करके काम करने वाले लोग हैं। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस क्षण में भी सहयोग की बात कर रहे हैं। कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेस।
नैनीताल हाईकोर्ट पिछले 4 दिन से एक के बाद एक तीखी टिप्पणियां केंद्र के रवैये पर कर रहा था और कई ऐसे सवाल उसने पूछ डाले थे जिनसे भारत सरकार के महाधिवक्ता और अन्य वरिष्ठ वकील असहज महसूस करने लगे थे। हरीश रावत और कांग्रेस की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के फैसले को नजीर बताते हुए कहा कि अन्य राज्यों में ऐसी कोशिश करने की मंशा रखने वालों को सचेत हो जाना चाहिए।
दिस जजमेंट टीचेस अस एंड रिमाइंड्स अस।
ये फैसला हमें सिखाता है और याद भी दिलाता है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश या मणिपुर या फिर किसी अन्य राज्य की तरफ लालच भरी निगाहों से देख रहे हैं, उन्हें अपने लालच को काबू में रखना सीख लेना चाहिए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को भी सही ठहराया, यानी बागी विधायक अब विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने सदस्यता रद्द करते हुए कहा कि बागियों को सजा भुगतनी होगी, लेकिन बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। सुनिए प्रणव सिंह चैंपियन और शैला रानी रावत को।
सबसे बड़ी अदालत हिंदुस्तान की जा रहा है और हमें इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद है।
पूरी लड़ाई लड़ेंगे और जो भी आदेश न्यायालय का होगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन हम अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
कांग्रेस की बागी शैला रानी रावत। उधर बीजेपी के लिए काटो तो खून नहीं की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह तक बीजेपी खेमा राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा था। 18 मार्च से शुरू हुए इस राजनीतिक ड्रामे के सूत्रधार माने जा रहे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया।
प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है हमारे दिमाग में कि कैसे मुख्यमंत्री जो कि स्टिंग ऑपरेशन में सीधे सीधे दिखाई दिए, उनको हाईकोर्ट ने रिलीफ दी है। आज भी हम कह रहे हैं कि हरीश रावत अल्पमत में है।
इधर कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश बीजेपी के नेता स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत इस फैसले से इतराए नहीं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट
कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी नहीं है, ये केंद्र सरकार का अपना निर्णय है, मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी नहीं हूँ। कांग्रेस पर लगे थे वो पाप धुलने वाले नहीं।
एक दिन पहले बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मिलने भी गए थे। बीजेपी की ऐसी कोशिशों की भनक लगते ही कांग्रेसी खेमा भी सक्रिय हो उठा था। कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलियों, यूकेडी और बीएसपी के मोर्चे के नेता मंत्री प्रसाद नैथानी भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। मोर्चे के 6 नेताओं ने हरीश रावत और कांग्रेस के साथ बने रहने का फैसला किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विधानसभा का गणित एक बार फिर हरीश रावत और कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है। स्थिति में बदलाव न हुआ तो इसका अर्थ यह है कि बागी विधायकों के निष्कासन के बाद 70 सीटों वाली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 62 की होगी और इन्हीं के बीच शक्ति परीक्षण होगा। ताजा सूरत हाल यह है कि कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं और बीजेपी के पास 27। लेकिन इससे पहले अगर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां से उन्हें कुछ राहत मिलती है तो एक बार फिर हरीश रावत सरकार की बहाली खटाई में पड़ जाएगी। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, ऐसी संभावना कम ही नजर आती है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
तो जैसा कि आपने सुना, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को खत्म करने का आदेश दिया। हालांकि अगर भारत के इतिहास में झांके तो संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती आई है और राज्य सरकारों को बर्खास्त करती रही है। लेकिन एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश की थी। क्या था वो फैसला और आज का ये जो फैसला है संघ राज्य संबंधों के लिए कितना बड़ा फैसला है, इस पूरे प्रकरण के विश्लेषण के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण से और सबसे पहले यही पूछा कि केंद्र सरकार के लिए ये कितना बड़ा झटका।
बहुत बड़ा झटका है क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वो कानूनन गलत है, और तो और ये भी कह दिया है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है जाए, लेकिन हाईकोर्ट अपने ऑर्डर पे स्टे नहीं लगाएगा। तो इससे बड़ा झटका क्या हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि एब्सोल्यूट पावर कैन स्पॉइल एनीबॉडीज माइंड, यानी कि आप जो बिना रोक टोक के जो निरंकुश जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। तो इसको आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कमेंट न समझें, ये क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे करता है। तो ये जो कहा गया है ये नरेंद्र मोदी सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ कहा गया है कि उन्होंने निरंकुश पावर का इस्तेमाल किया है।
लेकिन अगर मैं आर्टिकल 356 की बात करूं तो इस्तेमाल तो भारत में पहले भी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया जाता रहा है। यही काम कांग्रेस की सरकारें एक साथ 9 राज्यों की सरकार बर्खास्त करना
बिल्कुल करती रही हैं। और हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आर्टिकल 356 जो है उसको हटाना चाहिए, ये नहीं कहा है कि धारा 356 रहेगी, लेकिन उसका जो इस्तेमाल उत्तराखंड में हुआ है वो गलत हुआ है। और वो कानूनी तौर पे गलत इसलिए भी है क्योंकि एसआर बुमाई केस में कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट ही सबसे बड़ा टेस्ट है मेजोरिटी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। दूसरा, सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तराखंड सरकार को एक हफ्ते का समय देना चाहिए था जवाब देने के लिए कि आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों ना लागू किया जाए। बुमाई केस में ये भी कहा गया था कि प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन हो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, और वही इस केस में हुआ है। जुडिशियल रिव्यू में 3 चीजें हो सकती हैं कि क्या जो मटेरियल गवर्नर ने भेजा है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, क्या गवर्नर की चिट्ठी गई है, कोई ऐसा मटेरियल दिया गया है? दूसरा, क्या वो मटेरियल रेलेवेंट है? तीसरा, ये कि क्या गलत इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 356 का और राष्ट्रपति की पावर्स का? और अगर हुआ है तो कोर्ट उसका समाधान दे सकता है, और वही समाधान आज हाईकोर्ट ने दिया है।
भारत में जो सेपरेशन ऑफ द पावर है, यानी कि जो शक्तियों का पृथकीकरण है, अलग अलग जिस तरह से काम होता है, क्या अदालत ने लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं किया?
बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर को रिव्यू किया है। पावर का सही इस्तेमाल हुआ है कि गलत इस्तेमाल हुआ है?
केंद्र और राज्य संबंध है, क्या अदालत ने इस तरह का फैसला देकर एक एग्जांपल सेट किया है?
बिल्कुल किया है। आप देखेंगे जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो वो कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारिता से भरा हुआ संघीय शासन होगा भारत में, लेकिन कोऑपरेशन के बजाय उन्होंने कन्फ्रंटेशन का रास्ता चुना है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अरुणाचल में इन्होंने यही किया, वहाँ पे किस तरह से सरकार को बर्खास्त किया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ऐसी ही कोशिश मैं आपको अभी बता रहा हूँ नागालैंड में हो रही है, ऐसी ही कोशिश शायद हिमाचल में होगी, और ऐसी ही कोशिश करने की बात कर्नाटक में चल रही है। तो जो आज का फैसला आया है इसके बाद इन सब कोशिशों पे मैं आशा करता हूँ लगाम लग जाएगी। जो सरकार राज्यों में होती है वो सॉवरेन सरकार होती है, वो सॉवरेंटी वहाँ की जनता के पास है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। उसको आप सस्पेंड अगर करना चाहें तो किन कंडीशंस में सस्पेंड कर सकते हैं? वो कंडीशंस उत्तराखंड में मौजूद नहीं थी।
जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और जो कांग्रेस है, उसको कांग्रेस को एक मौका मिल गया है।
कांग्रेस को मौका तो मिल गया क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। हो सकता था कि अगले चुनाव में कांग्रेस इलेक्शन हार जाती। कांग्रेस में और हरीश रावत सरकार में एक नई शक्ति का संचार कर दिया है बीजेपी ने अपने गलत कामों के कारण। लेकिन मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, ये अभी सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और एक के बाद एक गलतियां करते रहेंगे।
अदालत ने 9 विधायक थे उनको अयोग्य करार दे दिया। अब ऐसे में स्पीकर की भूमिका क्या देखते हैं?
स्पीकर की भूमिका डिसाइडिंग वोट की हो सकती है क्योंकि अब हाउस का साइज हो गया कम। 70 की असेंबली में से 9 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो 61 बचते हैं। उसका 50% से ज्यादा वोट चाहिए हरीश रावत सरकार को, तो 25 उनके है ही, 6 छोटी पार्टियों के हैं, हो गए 31, और एक बीजेपी का रेबल एमएलए है तो भी कम पड़ जाता है, तो स्पीकर का डिसाइडिंग वोट जाएगा।
अदालत के फैसले और केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। रुख पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान की सेना ने अपने 6 बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले सभी अधिकारियों का संबंध फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान से बताया गया है। जबरन रिटायर किए जाने पर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाएं भी वापस ले ली गई हैं। इन अफसरों की बर्खास्तगी ऐसे मौके पर हुई है जब हाल ही में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने कहा था कि सेना देश में हर सतह पर जवाबदेही को मुमकिन बनाने के लिए कदम उठाने की हिमायत करेगी। विस्तार से जानकारी के लिए मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक से।
जो बर्खास्त किया गया है, नौकरी से डिसमिस किया गया है, उन पे जो चार्जेस थे वो तो करप्शन के थे, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के थे। अब तो जो सोर्सेज जो है, मिलिट्री सोर्सेज जो है, वो जिन बातों को कंफर्म कर रहे हैं, जिन चीजों को, वो 6 आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्हें ये करप्शन पे उन्हें अटैक किया गया है। उनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल है और एक मेजर जनरल, इसके अलावा ब्रिगेडियर भी हैं। जो सोर्सेज हैं वो तो 6 कंफर्म कर रहे हैं।
पाकिस्तान में सेना में करप्शन का ये मामला जो है वो कितना बड़ा है, और इस बर्खास्तगी से ये पता लगता है कि वाकई पाकिस्तान की जो सेना है वो करप्शन के चार्जेस से बहुत ज्यादा जूझ रही है।
करप्शन के चार्जेस पे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने जो 1-2 दिन पहले इनके उनका बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने टेररिज्म को रूट आउट करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो करप्शन है उसको भी खत्म किया जाए। तो उनके इस बयान पे पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी वेलकम किया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि आर्मी चीफ को सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो आज उन्होंने उसकी मिसाल भी कायम की है, और इन अफसरान के खिलाफ जो इंक्वायरी थी वो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि 1 साल पहले इनिशिएट की गई थी, और अब कुछ दिन पहले ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है।
अच्छा, ये जो करप्शन के जो चार्जेस हैं वो किस तरह के करप्शन के चार्जेस हैं?
देखिए, अभी तो कोई चीज सामने नहीं आ रही, हो सकता है कि फौज का शोबा ताल्लुकात आमा जो है वो इस बारे में कोई बयान जारी करे, लेकिन अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उन्हें करप्शन के इल्जाम में नौकरियों से बर्तरफ किया गया है। और ये जितने भी अफसरान हैं, ये फ्रंटियर कोर है बलूचिस्तान में, वहाँ पर ये मुख्तलिफ ओहदों पर ये फायद रहे हैं, और खासतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खटर जो है वो FC के IG की हैसियत से भी अपने खिदमात अंजाम दे चुके हैं।
इससे पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर आप देखते हैं? अब पाकिस्तान की जो सेना है और जो पाकिस्तान की सरकार, इनके रिश्ते कैसे होंगे?
देखिए, जब से ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि आर्मी अफसरान को उनके सैक कर दिया गया है नौकरियों से, उसके बाद से जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, कि चूंकि एक एलिगेशन ये भी है रूलिंग पार्टी पे कि नवाज शरीफ की फैमिली का नाम पानामा लीक्स में आया है, जिसमें ऑफशोर कंपनियां जिन्होंने बनाई थी, और ना सिर्फ टैक्स एविजन इन्होंने की है बल्कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ से पैसा जो है वो दूसरे मुल्कों में भी भिजवाया है, कि जिस तरह आर्मी ने अपने अंदर से खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, इस तरह नवाज शरीफ को उस वक्त तक वजीर आजम के ओहदे से अपने आप को अलग कर देना चाहिए जब तक पनामा लीक से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती।
पाकिस्तान की सेना ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाला। जानकारी और विश्लेषण कर रहे थे शहजाद मलिक।
खबर सच है अगर BBC पर है।
पाकिस्तान से एक बार फिर से रुख भारत का करते हैं, और रुख तीसरे चरण में कोलकाता की 7, मुर्शिदाबाद की 22, नदिया की 17 और बर्दवान जिले की 16 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। हालांकि चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 75,000 जवानों के अलावा राज्य पुलिस के 25,000 जवानों को तैनात किया गया था। इन प्रबंधों के बावजूद मतदान शुरू होते ही मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में CPM के पोलिंग एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे सहयोगी सलमान रावी ने कोलकाता में मौजूद BBC संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से पूछा कि दिनभर घटनाक्रम किस तरह से रहा।
देखिए, आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के बाद से ही एक हिंसक घटना की खबर आना शुरू हो गया था। लगभग 8 बजे मुर्शिदाबाद जिले की डोमकल क्षेत्र में बमबारी और एक व्यक्ति का निधन का खबर मिला, और बाद में CPIM का वहां जो उम्मीदवार है अनिसुर रहमान दावा किया कि उनका जो मृतक है वो उनका समर्थक रहा है, और काफी वहां हंगामा होता रहा।
मुर्शिदाबाद की घटना की अगर बात की जाए तो ये जो मारे गए वर्कर, उनके परिवार वालों का कुछ कहना है इस बारे में?
जी, स्थानीय मीडिया को उनकी पत्नी और उनकी बेटी आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के पंचायत जो प्रधान है स्थानीय, उन्होंने ही उनके पिताजी को मारा है। तौहीद रहमान की बेटी बोल रही थी कि वो तो खुद घर में थी, पर उनके अब्बा जो बूथ में गए थे और वहीं पर मार दिया गया उनको।
अमिताभ, इसके अलावा कलकत्ते में भी कई स्थानों पर आज वोटिंग हुई है, वो कौन सी जगह है और कैसा रहा कलकत्ते में भी? क्या हिंसा की घटना हुई है या कलकत्ते में मामला शांतिपूर्ण रहा बनिस्बत मुर्शिदाबाद के और दूसरी जगहों के?
उत्तर कोलकाता जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हुई है, और यहाँ खासकर 2 विधानसभा क्षेत्र एक है काशीपुर बेलगाछिया और दूसरी है बेलेघाटा, ये दोनों क्षेत्र से भी सुबह से ही हिंसक घटना की खबरें आ रही थी। जो छप्पा वोट देने के लिए, रिगिंग करने के लिए दूसरे इलाके से आए थे, ऐसे लोग पकड़े गए। दोपहर तक इसका आंकड़ा था करीब 60 लोग पकड़े, ऐसे लोग पकड़े गए।
तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता को लेकर भी विवाद हुआ है दिन में आज।
काशीपुर इलाके की एक तृणमूल कांग्रेस की नेता अनवार खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन फाइल दर्ज किया था और उनका हाउस अरेस्ट का ऑर्डर हुआ था, पर आज सुबह कैमरे के आगे वो उनको बोलते हुए ये सुनाई दिया।
तो इसके अलावा जो है कुल मिलाकर के क्या,
और ये काफी चौंकाने वाली क्लिप है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुंह पे जूता मारने के धमकी दिया जा रहा था और ये टेलीविजन चैनलों पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद इसका अरेस्ट का निर्देश आया था इलेक्शन कमीशन से।
अमिताभ भट्टाशाली चुनाव में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी दे रहे थे। भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक सप्ताह की अस्थिरता के बाद जनजीवन तो सामान्य हो गया, लेकिन जिले के सीमावर्ती कस्बे में आज सेना और पुलिस ने दावा किया कि एक साझे ऑपरेशन में 3 चरमपंथियों को उसने मार गिराया है और गांव में छुपे और चरमपंथियों की तलाश जारी है। दक्षिणी कश्मीर में भी आज चरमपंथियों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन हमलावर फरार होने में सफल हो गए। और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
श्रीनगर में तैनात भारतीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल एनएन जोशी के मुताबिक ये मुठभेड़ लाइन ऑफ कंट्रोल के निकटतम क्षेत्र पुतुशाही लोलाब में आज सवेरे शुरू हुई। कई घंटों की क्रॉस फायरिंग के बाद सेना ने दावा किया कि 3 चरमपंथियों की लाशें मिली हैं, तहम इनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। प्रवक्ता के मुताबिक खुफिया सूचना मिलने के बाद सेना की 21 RR और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक साझा ऑपरेशन शुरू किया जिसके दौरान ये चरमपंथी मारे गए। कुपवाड़ा में पुलिस के उच्च अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि खुफिया सूचना के मुताबिक ग्रुप में लश्कर तैयबा के 4 चरमपंथी थे।
तो सुबह थोड़ी सी लाइट निकली तो उसमें मिलिटेंट बाहर आए और उन्होंने फायरिंग हम पर की, तो उसमें रिटेलिएशन हमने किया जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 थे लेकिन अभी तक 3 मारे गए हैं, सर्च अभी चल रहा है, इस तरह लगता है कि लश्कर के।
गौरतलब है कुपवाड़ा के हंडवाड़ा कस्बे में 12 अप्रैल को सैनिक द्वारा एक लड़की की कथित छेड़छाड़ के मामले पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसके विरोध में सेना और पुलिस की कार्रवाइयों में एक महिला और 4 युवा मारे गए। एक सप्ताह तक कर्फ्यू और प्रतिबंधों के बाद कस्बे से 4 सैनिक बंकर हटाए गए जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट होने के कारण जिले में चरमपंथियों की घुसपैठ का सिलसिला 26 वर्ष से जारी है। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस के दुआ का कहना है कि घुसपैठ को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति अपनाई जा रही है।
द टेरेन इन दिस एरिया इज सच दैट द इन्फिल्ट्रेशन डज मैनेज टू टेक प्लेस, आई विल नॉट डिनाई दैट।
जनरल दुआ ने बताया कि घने जंगलों और पहाड़ों की वजह से घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन सेना घुसपैठ को रोकने में सफल है। इनका कहना था कि पिछले वर्ष ऐसे 600 प्रयास किए गए जिन्हें विभिन्न ऑपरेशनों के दौरान विफल किया गया। पिछले दशक के दौरान कश्मीर में हिंसा का ग्राफ काफी नीचे तक घट गया है, लेकिन स्थानीय मिलिटेंसी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया चैलेंज है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ इस वर्ष के पहले 3 महीनों में 32 चरमपंथी मारे गए जो 2011 से अब तक की बड़ी संख्या है। सेना के मुताबिक कश्मीर में 150 चरमपंथी सक्रिय हैं जिनमें से 85 स्थानीय युवक हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
दिनभर कार्यक्रम में फिलहाल तो वक्त है आपकी चिट्ठियां सुनने का, लेकिन आपकी राय लेकर हम अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के 7 जिले आते हैं और पिछले 3 सालों से सूखे की मार और पानी की कमी ने किसानों का जीना भले ही दूभर कर दिया हो और वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इलाका वरदान साबित हो रहा है। पूरे बुंदेलखंड में खनन का कारोबार जोरों पर है और इससे जुड़े लोगों के लिए यहाँ की लाल मिट्टी वाली सूखी धरती सोना उगल रही है। सूखा भारत की चौथी कड़ी में सुनिए समीर आत्मन मिश्र की ये खास रिपोर्ट।
पानी गौ रहो ना पानी, आखिर अब का बाकी है। फटी दराले तलवन में और जल को स्तर सूख रहो, और बूंद बूंद के पीछू देखो, युद्ध सुनिश्चित बाकी है।
सुदीप श्रीवास्तव बुंदेलखंड के छतरपुर इलाके में रहते हैं और अपने चारों ओर जो देखते हैं उसे कविता में उतारते हैं। श्रीवास्तव का यथार्थ इस इलाके में रहने वाले हर बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और औरत का यथार्थ है। चित्रकूट से बांदा और महोबा की ओर चलने पर तपती दोपहरी में सफ़ेद धूल सूरज की रोशनी को और चमकदार बना देती है। ये क्रेशरों से निकली धूल है और इन क्रेशरों के पास कुछ देर भी खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ जगह जगह पुकलैंड और जेसीबी मशीनें खनन करती दिखेंगी और बड़े बड़े ट्रक इन ग्रेनाइट पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते मिलेंगे। महोबा जिले के कबरई गांव के पास इस उद्योग का विभत्स दृश्य दिखता है।
पूरे इलाके में स्थिति यह है कि पहाड़ों तक को खोद दिया गया है और कई जगह तो पहाड़ मैदान बन चुके हैं। पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कई तरह के मानक निर्धारित हैं। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन है कि रिहायशी इलाकों से दूर खनन होना चाहिए और पहाड़ों में विस्फोट होना चाहिए, लेकिन इसका अनुपालन शायद ही कहीं हो रहा हो। महोबा जिले के गुगौरा गांव के निवासी एसएस परिहार सड़क के किनारे रहते हैं। उनसे बातचीत में इलाके के लोगों का दर्द साफ समझ में आता है।
इतना स्टोन हो गया यहाँ कि चारों तरफ उसके मारे लोग बीमार हैं, नाना तरह की बीमारियाँ पड़ रही हैं। अब यही रोड है, प्रधानमंत्री योजना का रोड है, इसमें 14 टन 15 टन लाद के निकलने का आर्डर है। 50 टन से नीचे कोई लाद के चलता ही नहीं ट्रक, और दिन भर में कम से कम 100-200 ट्रक निकलता है। सारे रोड ध्वस्त हो गए, धूल की धूल, धंधा इतना होता है कि दिन रात आदमी परेशान, नींद नहीं ले पाता।
बांदा, हमीरपुर जैसे कुछ जिलों में लोग खनन की दोहरी मार सह रहे हैं। एक ओर पहाड़ काटकर पत्थर निकाले जा रहे हैं और क्रशर प्लांट में उनसे गिट्टी बनाई जा रही है, दूसरी ओर नदियों के किनारे बालू खनन जोरों पर किया जा रहा है, जिससे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन उद्योग में बड़े और रसूखदार लोग शामिल हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन भी उन पर हाथ डालने से बचते हैं। हालांकि बांदा के जिलाधिकारी योगेश कुमार कहते हैं,
ये अवैध खनन वाला बिंदु मेरे संज्ञान में, जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे संज्ञान में लाया गया। मैंने यहाँ के जो SDMs और CEOs हैं, हमारे डिफरेंट क्षेत्र अधिकारी हैं, उन लोगों की संयुक्त बैठक की। उन लोगों को क्लियरली और कड़े निर्देश दिए कि आपके क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें नहीं आनी चाहिए।
जानकारों का कहना है कि बुंदेलखंड के जल संकट के लिए काफी हद तक खनन और वनों की कटाई भी जिम्मेदार है। बांदा चित्रकूट परिक्षेत्र के वन संरक्षक KL मीणा बताते हैं,
खनन तो जबरदस्त है, आप जान रहे, पूरा प्रदेश को फीट करता है आपका बुंदेलखंड। भाई मोरंग ले लीजिए, बालू ले लीजिए, गिट्टी ले लीजिए, सब यही जा रहा है। पहाड़ के पहाड़ खत्म हो रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दिए, पहाड़ को खोद के पाताल बना दिया, ये हालत है। 5000 हेक्टेयर जंगल वन क्षेत्र है पूरे बुंदेलखंड में, आपका मात्र 5-6% है पूरे एरिया का, तो जबकि मानक के अनुसार 33% होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों को इसकी भयावहता का अंदाजा न हो, लेकिन इसके पीछे लगे लोगों की ताकत के चलते कोई हाथ नहीं लगाता। खनन की मार से बांदा जिले का भरतकूप इलाका भी जबरदस्त प्रभावित है। यहाँ से चित्रकूट की ओर चलने पर विंध्य पर्वत श्रेणियों में जगह जगह पत्थर खोदने के निशान मिलेंगे। सड़क के पास ही पहाड़ पर जब एक बड़ा कटान दिखा तो हम तस्वीर लेने के लिए रुके। पहाड़ के दाहिनी ओर एक स्कूल दिखा, स्कूल में खाकी पैंट और शर्ट पहने कुछ बच्चे भी दिखे। बच्चों से बातचीत के लोभ ने हमें उनके पास पहुंचाया। जूनियर हाई स्कूल, यानी जिसको यहाँ पे मिडिल स्कूल कहते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे साथ और मुझसे बात करने के लिए बड़े इच्छुक हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
माया यादव।
किस क्लास में हो तुम?
7।
अच्छा, 7th में कितने विषय पढ़ाए जाते हैं?
हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, पर्यावरण।
अच्छा, अभी ये लड़की बता रही है कि पर्यावरण भी आपके कोर्स में है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है?
पर्यावरण क्षेत्र के बारे में है, जैसे कि पर्यावरण में क्षेत्र के बारे में आता है, पशु पक्षियों के बारे में आता है, विज्ञान भी है उसमें थोड़ी थोड़ा।
बच्चों को भले ही पर्यावरण पढ़ाया जा रहा हो और कुछ बच्चे पर्यावरण को समझ भी रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड की ये दुर्दशा चीख चीख कर कह रही है कि इस पर्यावरण के महत्व को समझने की बड़ों को भी जरूरत है। समीर आत्मज मिश्र, BBC चित्रकूट।
समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट आप सुबह के प्रसारण में भी आप सुन सकेंगे। खेल की बात करते हैं। आज राजकोट में गुजरात लायंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लायंस ने अब तक अपने 3 मैच जीते हैं और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम पर भी वो इस रिकॉर्ड को कायम करना चाहेंगे। कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा में 29 अप्रैल को बहुमत की परीक्षा होगी। पाकिस्तान की सेना ने अपने 6 बड़े अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया है। सीरिया के विद्रोहियों के अधिकार वाले रस्तान शहर में राहत सामग्री की सबसे बड़ी खेप पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना पर अपना नियंत्रण बढ़ाते हुए ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड सेंटर के कमांडर इन चीफ का पद हासिल कर लिया है। नेटो ने कहा है कि एजियन सागर के रास्ते तुर्की से यूरोप जाने वाले प्रवासी की संख्या में भारी कमी आई है। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 22 सीटों पर वोट डाले गए। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। घटना चक्र में आपकी राय लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घटना चक्र कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होनी तय है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।